بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری ہوشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है parstoday.com/hi। श्रोता, व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोता, आज शनिवार है, दय मास की 18, जमादे सानी की 5 और जनवरी की 8 तारीख। हमारी इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। समाचारों के बाद हम आपको सुनाएंगे दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और राजनीतिक चर्चा के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा ईरान भ्रमण। श्रोताओं, सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा। तो ये है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप हमारी सभा से सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वियना में जारी वार्ता में प्रगति हो रही है और ईरान तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सील संपत्ति रिलीज करने पर समझौता हो गया है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कजाकिस्तान में हालात को काबू करने के लिए देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में भारी हिमपात के कारण दर्जनों लोग मारे गए हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मशहद में नेशनल जियारत वर्किंग ग्रुप की बैठक में कहा कि ये जरूरी है कि लोग आसानी से कम खर्च पर जियारत कर सकें। जियारत के नेशनल वर्किंग ग्रुप की बैठक 2 साल के अंतराल के बाद हुई, जिसमें पवित्र नगरों की यात्रा का खर्च कम करने के उपायों पर विचार किया गया। इस बैठक में ईरानी और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थलों की जियारत आसान बनाने के लिए 12 प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में राष्ट्रपति रईसी के अलावा संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, बजट व नीति आयोग के प्रमुख और अन्य उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि पैगंबर इस्लाम के परिजनों के रोज़ों की जियारत के लिए लोगों के दिलों में मौजूद खास चाहत आस्था का विषय है और ज़रूरी है कि लोगों को आसान और सस्ती जियारत उपलब्ध कराई जाए।
वियना में जारी वार्ता के बीच रूस और फ्रांस की ओर से बयान आया है कि वार्ता में प्रगति हो रही है। इस समय वार्ता का 8वां दौर चल रहा है। इस बीच ईरान और दक्षिण कोरिया के बीच ईरान के कई अरब डॉलर की रकम रिलीज करने पर सहमति बनी है। वियना में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु समझौते से जुड़े अन्य प्रतिनिधिमंडलों की बैठक हुई, जबकि ईरान इस वार्ता में शामिल नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि वो इस मुद्दे पर केवल उन देशों से बातचीत कर रहा है जो परमाणु समझौते में शामिल हैं। अमरीका इस समझौते से निकल गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन एफ लोद्रियान ने कहा कि वियना वार्ता में प्रगति हो रही है। मुझे विश्वास है कि समझौता संभव है, मगर समय भी गुजरता जा रहा है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के राजदूत मिखाइल ओलियानोव ने भी कहा कि वार्ता में प्रगति हुई है। ओलियानोव ने वियना में पश्चिमी देशों के प्रतिनिधिमंडलों और सऊदी अरब के राजदूत से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। इसी बीच तेहरान और सियोल के मध्य दक्षिणी कोरिया में सील ईरान के अरबों डॉलर की रकम रिलीज करने पर सहमति बनी है। दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की रकम उसके हवाले करने की शैली और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बातचीत हो रही है।
यूरोपीय संसद के आयरिश प्रतिनिधि ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ उनके गौरवशाली संघर्ष को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय सांसद क्लेयर डेली ने जनरल सुलेमानी के बारे में विदेश मंत्रालय के सार्वजनिक कूटनीति केंद्र की इन्फोग्राफिक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2 साल पहले आज के दिन जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की गैर कानूनी रूप से हत्या कर दी गई। यूरोपीय सांसद ने दोनों शहीद कमांडरों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हीरो करार दिया।
भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। इनमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव भी शामिल है। यही वजह है कि चुनावों का महत्व बहुत ज्यादा है। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इन विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में पहला चरण 10 फरवरी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी उत्तर प्रदेश में तीसरा चरण 20 फरवरी उत्तर प्रदेश में चौथा चरण 23 फरवरी पांचवा चरण 27 फरवरी उत्तर प्रदेश में छठा चरण 3 मार्च उत्तर प्रदेश में सातवां चरण 7 मार्च और 10 मार्च को 5 राज्यों की मतगणना होगी। उत्तराखंड पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। इन राज्यों में क्रमशः 70A 117 और 40 सीटें हैं। मणिपुर में 27 और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। इस राज्य की विधानसभा की 60 सीटें हैं। जिन 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हुआ है वहां आदर्श चुनाव संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
कोरोना की वैश्विक महामारी ने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो अभी तक लंबे लॉकडाउन के विनाशकारी प्रभाव से उबर नहीं पाई। आर्थिक हालात में सुधार के इशारे तो मिल रहे हैं और इसकी वजह कई महीनों से रुकी हुई मांगों में वृद्धि और भारत सरकार की ओर से विकास परियोजनाओं पर किया जाने वाला खर्च है, लेकिन देश से रोजगार के अवसर भी लुप्त हो गए हैं। एक आज़ाद थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर महीने में 8% तक पहुंच गई। ये सन 2020 और 2021 के सभी महीनों से ज्यादा थी। विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु ने कहा बताया कि भारत के इतिहास में बेरोजगारी की दर कभी इतनी ज्यादा नहीं रही, खासतौर पर पिछले 3 दशकों, यहां तक कि 1991 में भी यह हालत नहीं थी जब भारत के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भारी अभाव पैदा हो गया था।
कजाकिस्तान में प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए दिखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कहना है कि देश भर में हिंसा और सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए उन्होंने सुरक्षा बलों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ कई दिन की झड़पों के बाद सुरक्षा बलों ने देश के सबसे बड़े शहर अल्लामाती पर फिर से नियंत्रण कर लिया है। प्रदर्शनों पर काबू पाने में कजाकिस्तान की सेना की मदद के लिए रूस ने इस देश में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके एक दिन बाद शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने हिंसाग्रस्त अल्लामाती की सड़कों पर मार्च किया।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहाड़ी इलाके मरी में भारी हिमपात में फंसकर दर्जनों लोग मारे गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अब तक कम से कम 21 लोगों की जाने गई हैं, जबकि इस संख्या में वृद्धि की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इस इलाके में और भी बारिश और हिमपात होने की भविष्यवाणी है। विभाग ने 5 जनवरी को भारी हिमपात की भविष्यवाणी कर दी थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने कम वक्त में अगर किसी जगह पहुंच जाएं तो प्रशासन के लिए हालात को संभाल पाना संभव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह से प्रशासन कह रहा था कि वहां ना जाएं और हम एक बार फिर यही कहेंगे कि पहाड़ी इलाके में ابھی کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں بھاری بھیڑ ہے۔ پاکستان کے گرہ منتری شیخ رشید نے بتایا کہ بچاؤ و سہایتا ابھیان کے لیے سینا کی مدد لی گئی ہے۔ مری میں ہونے والی موتوں پر پردھان منتری عمران خان نے کھیت جتاتے ہوئے جانچ کے آدیش جاری کیے ہیں۔
افغانستان میں طالبان کے انترم سرکار کی دھارمک پولیس نے راجدھانی کابل میں پوسٹرز لگا دیے ہیں جن میں افغان مہیلاؤں کو پردہ کرنے کا آدیش دیا گیا ہے۔ اے ایف پی کے انوسار وہ پوسٹر جن میں ایک چہرے کو برقعے سے ڈھانپے دیکھا جا سکتا ہے۔ دھارمک نردیش لاگو کروانے والے منترالے کی اور سے اسی سپتاہ کیفے اور دکانوں پر لگائے گئے ہیں۔ اگست میں ستا میں واپس آنے کے بعد طالبان نے وشیش روپ سے مہیلاؤں اور لڑکیوں کی آزادی پر تیزی سے پابندیاں لگائی ہیں۔ پوسٹر میں پردے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شریعت کے انوسار مسلم مہیلاؤں کے لیے حجاب ضروری ہے۔
افغانستان کے لیے اپنی مانویہ سہایتا جاری رکھتے ہوئے نئی دلی نے کابل کو 6 ٹن دوا اور چکتسا اپکرنوں کی سوغات دی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے انوسار بھارتی ودیش منترالے کے پروکتا ارندم باغچی نے بتایا کہ دوائیوں اور چکتسا اپکرنوں کو شکروار کو کابل استھت اندرا گاندھی اسپتال کے حوالے کر دیا گیا جسے 2004 میں بھارت کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔
سعودی عرب نے اپنے پڑوسی یدھگرست دیش یمن کے خلاف ہوائی حملوں کا ایک نیا دور آرمبھ کیا ہے۔ یمن یدھ کو 6 ورش پورے ہونے والے ہیں۔ ایسی استھتی میں ریاض اور اس کے شیتری سہیوگیوں نے لڑائی میں تیزی لاتے ہوئے اس دیش کی پیڑی جنتا کے سروں پر ایک بار پھر بموں کی بارش شروع کر دی ہے اور یمنی راشٹر کی کرور گھیرا بندی تنگ کر دی ہے۔
سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر اس سمے آگ لگی ہوئی جس کی وجہ دیش کے دکشنی علاقے جازان میں ارد نگن مہیلاؤں کا ڈانس کارکرم ہے۔ جازان ونٹر کے نام سے ہونے والے اس کارکرم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ارد نگن مہیلائیں ڈانس کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ علاقے کے امیر نے اس معاملے کی جانچ کے آدیش جاری کیے ہیں۔ ڈانس کرنے والی مہیلاؤں میں ایک مہیلا کے لباس پر بہت زیادہ آپتی جتائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں لوگوں کو اس بات پر ناراضگی ہے کہ یہ دیش اسلامی جگت میں ایک خاص استھان رکھتا ہے کیونکہ اس دیش میں مکہ اور مدینہ جیسے مہتوپورن پوتر استھل ہیں۔
بیجنگ نے چین ورودھی امریکہ اور جاپان کے بیان کو اپنے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ قرار دیتے ہوئے کڑی چیتاونی جاری کی ہے۔ سپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انڈو پیسیفک کھیتر کی تازہ پرستھتیوں کو لے کر حال ہی میں واشنگٹن اور ٹوکیو کے بیچ وچار ومرش کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا تھا جسے چین نے خارج کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
راجنیتک چرچا کے ساتھ میں اختر رضوی آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں۔ میرا سلام سویکار کریں۔ ہماری آج کی چرچا کے وشے ہیں عراق میں بنے رہنے کے لیے امریکیوں کا نیا پینترا، کشمیر میں یوواؤں کی گرفتاریوں کے خلاف بیان اور ٹرمپ کا راشٹرپتی پر حملہ۔ تو سب سے پہلے عراق میں بنے رہنے کے لیے امریکیوں کا نیا پینترا کا وشے۔ December 31, 2021 کو عراق سے امریکی سینیوں کو پوری طرح سے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن امریکی سینک اس دیش میں یتھاوت بنے ہوئے ہیں۔ عراق کے سوئم سیوی بلوں سہت عراقی جنتا نے دیش سے امریکی سینیوں کے نشکاسن کی مانگ کی ہے۔ ایک سمیکشا پیش کر رہے ہیں ساتھی سید میسم۔
31 دسمبر 2021 کو عراق میں امریکی سینکوں کی تعیناتی کی اودھی سماپت ہونے کے بعد اس دیش کی جنتا کے سامنے اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ امریکی سینک دیش سے کب باہر نکلیں گے۔ عراقی سوتروں کا کہنا ہے کہ 2022 میں بھی امریکی سینک عراق کی سرزمین پر موجود ہیں، صرف اس انتر کے ساتھ کہ اب انہوں نے خود کو سینے صلاحکار بتانا شروع کر دیا ہے۔ عراقی جنتا اور سنسد کی اچھا کے وپریت ابھی بھی 2500 امریکی سینک اس دیش میں اپستھت ہیں اور واشنگٹن ان کی غیر قانونی اپستھتی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نت نئے بہانے کھوج رہا ہے۔ حالانکہ عراقی پرتیرودھی گٹوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی ودیشی سینک کے قدم کو دیش کی راشٹریہ سمپربھوتا کا الگھن سمجھتے ہیں، اس لیے پرتیرودھ کرنے اور قبضہ کرنے والی شکتیوں کو دیش سے باہر نکالنے کے لیے پرتیبدھ ہیں۔ شکروار کو سید الشہدا بریگیڈ کے مہا سچیو ابو اعلی الولائی نے کہا ہے کہ امریکہ عراق میں بنے رہنے کے لیے دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، جبکہ دیش میں اس کی اپستھتی غیر قانونی ہے۔ ابھی بھی امریکی لڑاکو ویمان عراق کی وایو سیما میں اڑانیں بھر رہے ہیں اور امریکی عراق کو اپنی کالونی سمجھ رہے ہیں۔ 5 جنوری 2020 کو عراقی سنسد دوارا ودیشی سینکوں کو دیش سے نکالے جانے کے لیے ایک پرستاؤ پارت کیا گیا، جس کے بعد اس دیش میں امریکی سینکوں کی اپستھتی پوری طرح سے غیر قانونی ہو گئی۔ عراقی جنتا بھی اپنے دیش سے ودیشی سینکوں کی ترنت واپسی کی مانگ کر رہی ہے۔ اب اگر امریکہ یہ دعویٰ بھی کرے کہ عراق کے پردھان منتری کی انومتی سے اس کے سینک اس دیش میں موجود ہیں تو اس کے اس دعوے کے لیے کوئی قانونی آدھار نہیں ہے، اس لیے کہ عراق کے سمویدھان کے مطابق پردھان منتری دوارا کیا گیا کوئی بھی سمجھوتا اس وقت تک مانیہ نہیں ہوگا جب تک سنسد دو تہائی سے اسے انومودت نہ کر دے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی سینکوں کی عراق میں اپستھتی غیر قانونی ہے اور عراقی جنتا اپنے دیش میں حملہور شکتیوں کا وجود ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گی۔
اور اب چلتے ہیں بھارت۔ بھارت نینترت کشمیر میں یوواؤں کی گرفتاری کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے۔ راجنیتک دلوں نے اس کی کڑی آلوچنا کی ہے اور پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے کیندر سرکار سے کہا ہے کہ جانچ کے بنا کسی کو بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ وسترت رپورٹ کے ساتھ شری نگر سے ہمارے ساتھی سپتے محمد حسن۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش اور جموں کشمیر کی بھوتپورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے ہوم منسٹر آف انڈیا سے آہوان کیا ہے کہ کشمیر میں جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کی اچھی طرح سے چھان بین ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریسنٹلی ارسلان نامی ایک یوا کو گرفتار کیا گیا اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسے تمام سرکشا ایجنسیوں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا، پرنتو اب اسے ٹی آر ایف کے ساتھ جوڑ کر اسے ایک آتنکوادی گھوشت کیا گیا ہے، جو اچھے سنکیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اب ہم ایک پتر بھی اس حوالے سے ہوم منسٹر کو لکھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارسلان کے پتا ان سے ملنے آئے اور انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے دائرہ 370 اور 35 کے سماپت کرنے کے بعد یہاں نئی دہلی ان کے انوسار منمانی کر رہی ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے ورودھ میں پردرشن بھی کیا ہے اور پردرشن کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پردرشن ڈیلیمیٹیشن یا ایک جیسے ایشو پہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان تمام وشوں کا ورودھ کر رہے ہیں جس سے ہماری آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس اوسر پر کہا
یہ ارسلان کی فیملی تھی جو بھی یہاں آئی تھی، جن سے ہم ملی، اس کے والد، اس کی ماں، اس کی بہن اور باقی رشتے دار آئے تھے میرے پاس، جن کا یہ کہنا ہے کہ ارسلان کو پہلے بھی 21 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا، گرفتار نہیں، انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کیا کہ پوچھ تاچھ کے لیے 40 دن تک وہ بند رہا، کبھی یہاں، کبھی اننت ناگ جی آئی سی میں اور کبھی کارگو میں۔ اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر اچانک 30 دسمبر کو پھر اس کو گئے گھر اور گھر والوں نے پھر اس کو ہینڈ اوور کیا, تو تب سے اس کے بعد کچھ بتایا نہیں کیوں اریسٹ کر رہے ہیں, اگر پہلے کلیئر کیا تو آپ کیوں اریسٹ کر رہے ہیں.
اس بیچ سرینگر اور گاٹھی کے تمام قصبہ جات میں بھاری ہمپات کے کارن سامانی جن جیون است وست ہو کر رہ گیا ہے. سرینگر جموں مارگ یاتایات کے لیے بند پڑا ہے. بھاری ہمپات کے کارن کشمیر کا وشو اور دیش کے ساتھ سمپرک ٹوٹا ہوا ہے. اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے ہمپات کی استھتی سے نمٹنے کے لیے جو کاریہ کیے ہیں اس حوالے سے ڈپٹی میئر نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا,
جی دیکھیں اس سال ہم نے پوری تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھی تھی. ہم نے یہ جو برف ہٹانے کا کام ہے یہ پہلے ہی آؤٹ سورس ہوا ہے, تو اس میں ہم نے کہیں سارے وارڈز میں جو ہمیں کمی دکھی پچھلے سال, اس سال ہم نے وہ کمی پوری کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سویرے سے صبح 4 بجے سے جو بھی شہر کی لینز بائی لینز ہیں ان سے برف ہٹا, اور جہاں پہ چھوٹے ہماری گلیاں ہیں جہاں سے مشینیں برف نہیں ہٹا پائی تو وہاں سے ہم نے مینولی برف کو ہٹایا. ابھی شہر میں کسی جگہ ایسی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی کہ یہاں پہ برف نہیں ہٹی.
سبتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
اور اب چلتے ہیں امریکہ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के कांग्रेस पर हमले की बरसी के दिन दिए गए भाषण की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इस समय अमेरिका विनाश की ओर बढ़ रहा है. एक समीक्षा पेश कर रहे हैं साथी कायम रिजवी.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कांग्रेस की इमारत पर हमले की बरसी पर इस देश के वर्तमान राष्ट्रपति के भाषण की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि इस समय अमरीका विनाश की ओर बढ़ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ये कहा कि अमरीका का वर्तमान राष्ट्रपति क्योंकि इस धांधली का परिणाम है इसलिए वो जहां भी हाथ डालता है नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि बाइडेन हमारे राष्ट्र को तबाह करने में लगे हुए हैं. आज वो मेरे नाम का दुरुपयोग करके अमरीका को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाना चाहते हैं. ट्रंप का कहना था कि बाइडेन अपनी विफलताओं को छुपाने के प्रयास में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लज्जाजनक वापसी, देश की सीमाओं की स्थिति, महंगाई, कोविड-19 के बारे में उदासीनता और इसी प्रकार की बहुत सी बातें उनकी विफलता को बताती हैं. इसी बीच ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले की बरसी के अवसर पर अपने समर्थकों का आह्वान किया है कि वे वैक्सीनेशन का आदेश देने की वजह से बाइडेन का विरोध करें. ट्रंप का कहना था कि छात्रों को जबरदस्ती वैक्सीनेशन लगवाने और स्कूलों को बंद करने के कारण बाइडेन का खुलकर विरोध किया जाए. अपने समर्थकों से ट्रंप का यह आह्वान अमेरिका के भीतर जारी राजनीतिक टकराव का नया चरण है. ट्रंप 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे. इसके बाद अपनी हार का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 जनवरी 2021 को अमेरिका की कांग्रेस की इमारत पर हमला किया गया, जो वहां की तारीख की अभूतपूर्व घटना बताई जाती है. एक समय तक अमरीका की सत्ता संभालने वाले ट्रंप अब अमरीका की व्यवस्था को भ्रष्ट बता रहे हैं. उन्होंने अमरीका के वोटिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि अमरीका की आंतरिक एजेंसियों ने 6 जनवरी की घटना को आंतरिक आतंकवाद की संज्ञा दी है. एक डेमोक्रेट सीनेटर कहते हैं कि जब तक रिपब्लिकन ट्रंप का समर्थन करते रहेंगे तब तक अमरीका के भीतर लोकतंत्र के लिए खतरा बना रहेगा. कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि चुनाव में धांधली के बारे में ट्रंप का झूठ अगर उनके समर्थकों के मन में बैठा रहा तो ये अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर किए गए हमले से भी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकता है. 6 जनवरी की घटना की बरसी पर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस घटना को लोकतंत्र के लिए स्थायी खतरा बता चुके हैं। ट्रंप का नाम लिए बिना बाइडेन ने कहा है कि अमरीका के इतिहास में ये पहली बार है कि जब हारे हुए राष्ट्रपति ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को बाधित करने के लिए उपद्रवियों का सहारा लिया, हालांकि उसको पराजय हाथ लगी। हमें इस बात के प्रति आश्वस्त होना होगा कि इस प्रकार की घटना देश में आगे कभी न होने पाए। 6 जनवरी 2021 की घटना ने अमेरिका के लोकतंत्र के दावे की पोल खोल दी है।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम नया सवेरा, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम ईरान भ्रमा।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, ईरान भ्रमण में आपका स्वागत है। मैं हूं अख्तर रिजवी। आज हम कुर्दिस्तान के सरंदज प्रांत की यात्रा करेंगे। दोस्तों, आपके लिए ये जानना रोचक होगा कि ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में 1520 ऐतिहासिक वस्तुएं और स्थान हैं, जिनमें प्राचीन अवशेष, प्राकृतिक गुफाएं, बेहद प्राचीन पेड़, चल अचल विरासत, भूमिगत नहरें और प्राकृतिक स्थान शामिल हैं। इस प्रांत के 878 प्राचीन अवशेष ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पंजीकृत हैं। इनमें 773 अचल अवशेष जैसे टीले, परिसर, इमारतें आदि हैं, जबकि 20 प्राकृतिक स्थान और 62 आध्यात्मिक चीजें हैं। 23 चीजें वो हैं जिनका शुमार चल संपत्ति में होता है। इनमें कुछ मूल्यवान ऐतिहासिक धरोहर जैसे ऐतिहासिक इमारतें सरंदज शहर में हैं। हम इस कार्यक्रम में आपको सरंदज की सैर कराएंगे। सरंदज के ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थलों में वे इमारतें भी हैं जिनकी वास्तुशैली बेमिसाल है। इसके अलावा सफवी और काजारी शासनकाल में जो घटनाएं हुई उनसे जुड़ी यादगारें हमेशा पर्यटकों को इस जगह की ओर आकर्षित करती हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों में से एक आसिफ इमारत है जो जातियों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे कुर्द आवास के नाम से भी जाना जाता है। कुर्द आवास दरअसल कुर्द जातियों की एंथ्रोपोलॉजी का नाम है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरे ईरान में एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कुर्द जाति का बड़े रोचक ढंग से परिचय कराता है। इस इमारत में कुर्द जाति के लोगों के जीवन के अनेक पहलुओं को देखा जा सकता है और इस इमारत तथा इसके भीतर रखी रोचक चीज़ों को देख कर आनंदित हुआ जा सकता है। इस संग्रहालय पर एक नज़र डालना रोमांचक होगा। ये इमारत सरंदज शहर में शासक वर्ग से जुड़े लोगों का आवास है जो दर्शनीय है। इसकी वास्तुकला, इसमें प्रयोग की गई ईंटें और इसमें किया गया चुनाकारी का काम, इसमें लगाई गई जालीदार डिज़ाइन वाली खिड़कियां, सब कुछ बेहद खूबसूरत हैं। इनमें खिड़कियों में लकड़ी और शीशे का बड़ा नाजुक काम किया जाता है और इसमें डिजाइनिंग का काम भी बड़ी सुंदरता से होता है। दोस्तों, आसिफ इमारत लगभग 4000 वर्ग मीटर के भूभाग पर फैली है। इसकी वास्तुकला और सजावट बड़ी सुंदर और आकर्षक है। बड़ी सुंदर शिल्पकारी से सजे हुए पत्थर, मेहराबी शक्ल के बड़े ताक वाकई बहुत खूबसूरत हैं। عمارت کا مکھیہ ہال اور اس کی کھڑکیاں اور دروازے ہر دیکھنے والے کو اس کے واستوکار اور نرماڑ کرتا کی بربس تعریف کرنے پر ویوش کر دیتے ہیں۔ عمارت کے بھیتر ایک چھوٹا سا حمام ہے جس کا نرماڑ قاجاریہ دور میں ہوا تھا۔ اسے پشچمی ایران کے اتیادھک سندر حماموں میں گنا جاتا ہے۔ اس کا نرماڑ اصفہانی واستوکلا کے انوسار ہوا ہے۔ استمبوں اور ان کے سروں کی سجاوٹ کے لیے جو شیلی اپنائی گئی ہے وہ واقعی بڑی آکرشک اور درشنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت میں مکھیہ دوار، دالان اور چار آنگن ہیں۔ ایک باہری آنگن ہے، دوسری بھیتری آنگن ہے اور ایک باورچی خانے کا آنگن ہے اور ایک نوکروں کا آنگن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عمارت جن الگ الگ کالکھنڈوں کی واستوکاری کا سنگم ہیں ان میں صفوی، قاجاری اور پہلوی کال کی واستوکلا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمارت کے الگ الگ بھاگوں کا نرماڑ الگ الگ دور میں کیا گیا۔ اس عمارت کے کئی بھاگ ہیں۔ ایک بھاگ میں پینٹنگ گیلری ہے، پرویش دوار سے سنلگن آنگن ہے، حمام، شہری جیون کے کمرے، پاٹشالا، بنائی اور کڑھائی کا کمرہ، آبھوشنوں کا کمرہ، کرشی سے جڑی وستوؤں کا کمرہ، وقت گزاری اور کلا سے جڑی گتیویدھیوں کا کمرہ، ایتیہاسک دستاویزوں اور چتروں کا کمرہ، سردار کا کمرہ، پوشاکوں کا کمرہ، شکار سے جڑی وستوؤں کا کمرہ، ہست کلا کا کمرہ، باورچی خانہ، گرامیڑ جیون کا بھاگ، لائبریری اور مکھیہ کاغذات کا کمرہ، یہ سارے الگ الگ بھاگ اس عمارت میں ہیں۔ اینتھروپولوجی کے اس سنگرہالے کی لائبریری میں پرانت کی اتینت مہتوپورن شودھ دستاویز رکھے گئے ہیں۔ اس عمارت کو 25 سال پہلے ایران کی راشٹریہ دھروہروں کی سوچی میں پنجیکرت کیا گیا۔ کرد آواز کے قریب سنندج کی ایک اور مشہور ایتیہاسک عمارت ہے جس کا نام خانہ سالار سعید ہے۔ 1975 میں عمارت کو سنندج کا سنگرہالیہ بنا دیا گیا۔ اس عمارت کا نرماڑ قاجاریہ واستوکلا کے آدھار پر اور ناصر الدین شاہ کے شاسن کے انتم ورشوں میں ہوا۔ اسے پتھر، اینٹوں اور لکڑی سے بنایا گیا جو قاجاریہ دور کی خوبصورتی کا درپن ہے۔ سنندج سنگرہالیہ کی عمارت کے پرمکھ بھاگوں میں اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ دروازے عام طریقے سے نہیں کھلتے بلکہ اوپر بنی خالی جگہ میں چلے جاتے ہیں اور راستہ کھل جاتا ہے۔ ان کھڑکیوں اور دروازوں کو بنانے میں رنگین شیشوں کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ان کی سندرتا کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے الگ الگ بھاگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کیلوں اور چپکنے والے پدارتھ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ لکڑیوں کو ہی اس طرح تراشا گیا ہے کہ ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے بھاگ سے جڑ جاتا ہے۔ سنندج سنگرہالیہ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو شیشے اور لکڑی کے 42,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے جن پر بڑی سندر ڈیزائنیں بنائی گئی ہیں۔ سنندج سنگرہالیہ پراچین اور ایتیہاسک وستوؤں اور اوشیشوں کو پردرشت کرنے سے وشیش ہے۔ اس کے چار بھاگ ہیں، اتہاس پورو، ایتیہاسک، اسلامی اور انترم دور۔ اتہاس پور بھاگ میں مٹی کے برتن، تانبے سے بنی چیزیں، انسانوں کی ہڈیاں رکھی گئی ہیں اور ان میں سے ادھکتر چیزیں بانے اور کنگاور شہر سے ملی ہیں جہاں زیویے ٹیلوں اور کرفتو گفا کی کھدائی میں بہت سارے اوشیشوں کا پتہ چلا۔ دوستوں، ऐतिहासिक वस्तुओं वाले भाग में जिसके लिए संग्रहालय के मुख्य हॉल को विशेष किया गया है, शीशे, मिट्टी, पत्थर और सोने की चीजें नजर आती हैं। इन चीजों में महिलाओं के आभूषण, तरह तरह के बर्तन, कुल्हाड़ियां, सुइयां, भाले का फल, खंजर, तरह तरह के प्याले और इत्रदान रखे हुए हैं। इस्लामी दौर की चीजों से विशेष भाग को मिट्टी की चीजों और धातु की चीजों के लिए दो भागों में बांटा गया है। मिट्टी की चीजों में प्याले, प्लेटें और मूर्तियां इत्यादि हैं जो अलग अलग तरह के चित्रों से सजाई गई हैं। धातु की बनी वस्तुओं वाले भाग में कई तरह के प्याले, देग, सेनी वगैरह रखी हैं। अंतरिम दौर के लिए विशेष भाग में जो इमारत के तहखाने में बनाया गया है, तांबे की मूर्तियां और शीशे के बर्तन रखे गए हैं। इस भाग की चीजें संग्रहालय के कार्यक्रम के अनुसार बदलती रहती हैं। इस संग्रहालय के करीब एक और सुंदर व दर्शनीय इमारत है जिसे हबीबी इमारत कहा जाता है। ये कुर्दिस्तान की हस्तकला के कीमती नमूनों का केंद्र है। इस इमारत का निर्माण 100 साल से अधिक पहले किया गया था और इसका उद्देश्य कुर्दिस्तान की हस्तकला को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में सक्रिय लोगों की मदद करना था। इस इमारत के भीतर अलग अलग हस्तकलाओं जैसे सोने का पानी चढ़ाने की कला, लकड़ी की वस्तुएं बनाने की कला, संगीत के यंत्र बनाने की कला, दरवाजे बनाने की कला, चीनी मिट्टी के चीजें बनाने की कला के लिए वर्कशॉप बनाई गई है। यहाँ पहुंचकर सैलानी ये देख सकते हैं कि इन कलाओं का महत्व कितना है और इन कलाओं के शानदार उत्पाद कैसे तैयार होते हैं। दोस्तों, कुर्दिस्तान के अलग अलग प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में आबीदर नेशनल पार्क का नाम लिया जा सकता है। आबीदर पहाड़ के आंचल में ये पार्क बना हुआ है। सनंदश के करीब स्थित ये पहाड़ 2500 मीटर ऊंचा है। ये पार्क 1300 हेक्टेयर पर फैला है जिसे इलाके से सबसे बड़े पार्कों में गिना जाता है। ये सैर सपाटे की जगह है, कसरत की जगह है, लाइब्रेरी है, मस्जिद है, रेस्टोरेंट है और मन को मोह लेने वाले सुंदर दृश्य यहाँ पर पाए जाते हैं। इस पार्क के भीतर कई बाग और जल सोते हैं। यहाँ के बड़े बागों में से एक अमीरिया बाग है जिसके भीतर बगैर छत का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है। आबीदर पहाड़ से बहने वाले बहुत सारे जलसोते पहाड़ के आंचल में स्थित बागों और खेतों को हरा भरा रखते हैं, जबकि इनका कुछ पानी सनंदज में रहने वालों के पेयजल के रूप में इस्तेमाल होता है। इस पहाड़ के ऊपर से सनंदज शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। सैलानी पहाड़ पर जाकर घंटों समय बिताते हैं और वहां से सनंदज शहर को निहारते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए हमारा सुझाव ये है कि इस सुंदर जगह पहुंचकर सुकून के कुछ पल गुजारने का मौका अगर मिले तो इसे हरगिज हाथ से जाने न दीजिए। इसी के साथ अगली मुलाकात तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। نیا سویرا.
दोस्तों साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा की कन्नी कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और मोहम्मद मेहती का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि स्पेन के एक नागरिक हुसैन ख्वान फ्रांसिस्को लुजानो किस तरह से मुसलमान हुए। आशा है हमारा प्रयास भी आपको पसंद आएगा।
दोस्तों ईश्वरीय धर्म इस्लाम को अरब प्रायद्वीप में उदय हुए एक शताब्दी का भी समय नहीं गुजरा था कि मुसलमानों ने अंडालूसिया को जीत लिया। उस समय अंडालूसिया में स्पेन और पुर्तगाल दोनों शामिल थे। अंडालूसिया पर विजय हासिल करने के बाद मुसलमानों ने गणित, वास्तुकला, इतिहास, चिकित्सा, कला और नक्षत्र आदि विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किए और बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां स्थापित की। ये वो समय था जब यूरोप मध्ययुगीन शताब्दी से गुजर रहा था और वहाँ अज्ञानता एवं अंधविश्वास का बोल बाला था।
प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार गुस्ताव ले बोन अपनी किताब इस्लामी और अरब सभ्यता में लिखते हैं, मुसलमानों ने कुछ शताब्दियों में अंडालूसिया को ज्ञान, विज्ञान और आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से बदल दिया, इस प्रकार से कि उसे यूरोप के गर्व का ताज बना दिया। और यह क्रांति ज्ञान विज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता के क्षेत्र में भी थी। गैर मुसलमानों के साथ मुसलमानों का बर्ताव इतना अच्छा था कि उन्हें अपने अपने धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति और पूरी आजादी थी।
लगभग 8 शताब्दियों तक मुसलमानों ने अंडालूसिया पर शासन किया और वहां के ईसाइयों ने अंडालूसिया की सरकार की कमजोरियों का लाभ उठाकर उसे पराजित कर दिया और थोड़े से मुसलमानों के अलावा सबको वहां से निकाल दिया। इस समय अंडालूसिया से मुसलमानों के शासन को समाप्त हुए लगभग 5 शताब्दियों का समय बीत रहा है, पर प्रतीत यह हो रहा है कि स्पेन के लोग आज भी अंडालूसिया के लोगों की संस्कृति और सभ्यता का एहसास कर रहे हैं और आज भी उनमें ईश्वरीय धर्म इस्लाम स्वीकार करने की तत्परता अधिक पाई जाती है।
आज स्पेन के एक प्रांत का नाम अंडालूसिया है और ख्वान फ्रांसिस्को लुजानो इसी प्रांत के एक नागरिक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। ख्वान फ्रांसिस्को लुजानो एक कैथोलिक ईसाई परिवार में पैदा हुए थे। उनका जन्म स्पेन के अंडालूसिया प्रांत के मालगा नगर में हुआ था। उनके परिवार के लोग संभवतः इस्लामी संस्कृति और इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने अपने बच्चों की प्रशिक्षा में काफी सीमा तक इस्लामी शिक्षाओं को ध्यान में रखा। मिसाल के तौर पर सुअर का मांस नहीं खाते थे और शराब का सेवन नहीं करते थे।
ख्वान फ्रांसिस्को उस समय इस्लाम की शिक्षाओं से अधिक परिचित हुए जब उन्हें एक कुरान मिला। वो कहते हैं, मैं 8 साल का था जब अपने पिता के साथ किताब बेचने की एक दुकान पर गया था। एक किताब ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वो किताब पवित्र कुरान थी। मेरे पिता ने मेरे लिए कुरान खरीदा। अलबत्ता उस वक्त मैं पवित्र कुरान की बातों और शिक्षाओं को अधिक नहीं समझता था, परंतु इस किताब का अध्ययन ही मेरे लिए इस्लाम को पहचानने की भूमिका बना।
ख्वान फ्रांसिस्को कहते हैं कि मैं ईसाई धर्म की शिक्षाओं में विरोधाभास देखता था जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। इस बारे में वह कहते हैं, जैसे हजरत ईसा ईश्वर के बेटे हैं और स्वयं ईश्वर भी हैं, ये बात मेरे गले से नहीं उतरती थी और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह अतार्किक है।
इस बारे में मैंने कई ईसाई पादरियों से सवाल किया, परंतु उन सब ने कहा कि ये एक राज है जिसे हम नहीं जानते हैं। उनके जवाब मुझे स्वीकार नहीं थे, यहाँ तक कि वर्ष 2008 में आधिकारिक तौर पर मैं कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघर से बाहर आ गया। उसके बाद ख्वान फ्रांसिस्को ने दूसरे धर्मों के बारे में अध्ययन करना आरंभ कर दिया ताकि वास्तविकता तक पहुंच सके। ख्वान फ्रांसिस्को का इस्लाम से संक्षिप्त परिचय इस बात का कारण बना कि वो ईश्वरीय धर्म के बारे में भी अध्ययन करें और परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि यह धर्म इंसान को लोक परलोक के कल्याण का रास्ता दिखाता है। परंतु जब वे इस्लाम धर्म के एक संप्रदाय को स्वीकार करना चाह रहे थे तो उन्हें कुछ कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने को विलंबित कर दिया ताकि अधिक अध्ययन कर सकें।
वे विश्वविद्यालय में एक इराकी से परिचित हो जाते हैं और वह उन्हें इमाम हुसैन अलैहि सलाम और महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहि सलाम की पावन जीवनी के बारे में किताबें देता है। ख्वान फ्रांसिको इन किताबों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वास्तविक इस्लाम पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के पास है। अंत में वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने के साथ साथ शिया भी हो जाते हैं और इमाम हुसैन अली सलाम से जो प्रेम, लगाव और श्रद्धा हो जाती है उसके कारण वह अपना नाम हुसैन रख लेते हैं।
वो पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के बारे में अपनी भावनाओं को इस प्रकार बयान करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम मेरे लिए बहुत आकर्षक हैं। अहले बैत उस आर्यस की भांति हैं जो मार्ग का निर्धारण करता है और इंसान का सही मार्गदर्शन करता है, गुमराही से बचाता है और अंत में इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं जो सब के लिए आशा की किरण हैं और अगर वो न हो तो इस ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं है। हुसैन यानी ख्वान फ्रांसिस्को कहते हैं कि इस समय दुनिया अत्याचार व अन्याय से भरी हुई है। ऐसे हालात में महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के प्रकट होने की उम्मीद पीड़ितों और न्याय चाहने वालों के दिलों में आशा की ज्योति है और लोगों के दिलों में ये ज्योति उन्हें अन्याय और अत्याचारियों से मुकाबले में डट जाने का साहस व हौसला देती है।
आमतौर पर जो लोग ताज़ा इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं वे पैगंबर इस्लाम के प्राणप्रिय नाती इमाम हुसैन अलैहि सलाम से विशेष श्रद्धा और लगाव रखते हैं। उसकी एक वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने अपने नाना पैगंबर इस्लाम के धर्म को बचाने के लिए जिस प्रकार की कुर्बानी दी वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और जो भी उनकी कुर्बानी, त्याग व बलिदान की कहानी पढ़ता है वह इमाम हुसैन अलैहि सलाम से प्रेम करने लगता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धर्म की रक्षा न्याय, प्रेम, बहादुरी, अत्याचार व अत्याचारी के मुकाबले में डट जाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मात्र कुछ विशेषताएं हैं जो समस्त लोगों, विशेषकर ताज़ा मुसलमान होने वालों के लिए सर्वोत्तम सीख है।
ख्वान फ्रांसिस्को कहते हैं, मैं समस्त इमामों में श्रद्धा रखता हूँ परंतु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बहुत श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कठिन परिस्थिति में आंदोलन किया, अत्याचारी के मुकाबले में डट गए, संघर्ष किया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस भावना को पसंद करता हूँ और इसी वजह से मैंने अपना नाम हुसैन रख लिया। कुछ समय के बाद अपनी धार्मिक जानकारी में वृद्धि के लिए वो एक इस्लामी देश की यात्रा का इरादा करते हैं और वो यात्रा के लिए ईरान का चयन करते हैं। रोचक बात यह है कि वो कहते हैं कि ईरान के चयन का कारण यह है कि ये अमेरिका और इस्राइल विरोधी है। हुसैन कुछ समय तक धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद विवाह कर लेते हैं।
इस्लामी गणतंत्र ईरान अमेरिका और दूसरी वर्चस्ववादी शक्तियों के मुकाबले में डटा हुआ है और उसने दुनिया के बहुत से स्वतंत्रता और न्याय प्रेमियों के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कर रखा है। पश्चिमी शक्तियां ईरान से दुश्मनी कर रही है और उसके विकास के मार्ग में विभिन्न प्रकार की रुकावटें व समस्याएं खड़ी करती है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वर्चस्ववादी शक्तियों को इस बात का डर है कि कहीं लोगों और राष्ट्रों में प्रतिरोध की भावना मजबूत न हो जाए।
पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों और इमामों की पावन समाधियां वे स्थल हैं जो समस्त लोगों, विशेषकर उन लोगों के ध्यान का केंद्र हैं جو تازہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایران کے پوتر نگر مسجد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا پوتر روزہ ہے، جہاں پرتی دن شردھالوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور روزے کا جو وشیش آدھیاتمک واتاورن ہے اس کا الیک شبدوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسپین کے تازہ مسلمان ہونے والے خوان فرانسس کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے پوت نگر مسجد جاتے، اور اس بارے میں وہ کہتے ہیں، جب میں پہلی بار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا تو میں بڑے ہی آشچرچکت نظروں سے دیکھ و نہار رہا تھا۔ اگلے دن صبح کی نماز کے لیے میں حرم گیا، میرے ساتھ جانے والے نے مجھ سے کہا کہ زیارت کے بعد مسجد کے دوسرے ستھانوں کو دیکھنے کے لیے چلیں گے، تو میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پوتر روزے کے آدھیاتمک واتاورن کے بارے میں خوان فرانسسکو یعنی حسین کہتے ہیں، وہاں کا واتاورن پوتر و آدھیاتمک ہے، جو انسان کو وشیش پرکار کی شانتی و آرام پردان کرتا ہے۔ جب میں امام رضا علیہ السلام کے پوتر روزے میں بیٹھتا تھا تو اس بات کا آبھاس کرتا تھا کہ یہاں کی زمین و واتاورن دوسری جگہوں سے بھن ہے، مانو سورگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں وہاں کے واتاورن سے بہت پربھاوت تھا۔ سارانش یہ ہے کہ وہاں کے واتاورن کا آبھاس ایک وشیش پرکار کا انبھو تھا۔ وہاں پر میں نے اپنے پریوار، اپنی پتنی اور اسی پرکار مہا مکتی داتا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کی دعا کی۔
خوان فرانسسکو پریوار پر جو دھیان دیتے ہیں وہ سراہنیہ ہے، اسی لیے کہ اسلام میں اپنے پریجنوں وشیش کر ماتا پتا کے ساتھ بھلائی کرنے کی بہت سفارش کی گئی ہے۔ کینسر کے کارن پتا کا ندھن ہو جانے کے بعد وہ چکتسا کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ شاید دوسروں کی سہایتا سے ان کی گردن میں ان کے پتا کا جو حق ہے شاید اسے ادا کر سکیں۔ اس سمے ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے۔ جب وہ امریکہ میں پڑھائی کر رہے تھے تو انہیں اپنے پتا کے ندھن کا سماچار ملا، وہ دکھد سماچار کے بعد بھی انہوں نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی، اور اس سمے وہ اسپین کے انڈالوسیا میں وبھن کھیتروں وشیش کر چکتسا و کینسر کے کھیتر میں دھیان یوگی سیوائیں دے رہے ہیں۔ تو دوستوں آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انمتی دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتا ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے تھے۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں سے ہمیں ضرور اوگت کروائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi۔ واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 00989035065492۔ تو شوتا اسی کے ساتھ ہماری یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات تک احمد عباس اور انیہ ساتھیوں کو انمتی دیجیے۔ خدا حافظ۔